ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह लोगों को संबोधित भी करेंगे। महोत्सव का लक्ष्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना और ग्रामीण समुदायों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है। इस 6 दिवसीय महोत्सव का विषय है वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए मजबूत ग्रामीण भारत का निर्माण। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण जनसंख्या के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। महोत्सव के दौरान उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि आप सरकार ने 10 वर्ष के शासन के दौरान दिल्ली को आपदा की ओर धकेल दिया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनता को पानी और सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए लगभग 1,700 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं, नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने द्वारका में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। भारत ने लद्दाख में 2 नई काउंटर स्थापित करने की चीन की घोषणा का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह चीन के हुतान विभाग में 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा सुन चुका है। एक प्रश्न के उत्तर में कल मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन तथाकथित प्रांतों के अधिकार क्षेत्र का कुछ हिस्सा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस क्षेत्र के भारतीय अंचल में अवैध चीनी अधिकार को कभी भी स्वीकृति नहीं दी है। वहीं चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की यारलुंग सांगपो नदी पर बन रही पनबिजली परियोजना से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री रणधीर जायसवाल ने कहा कि नदी के जल को इस्तेमाल करने के अधिकार के साथ निचले तटवर्ती देश के रूप में भारत ने अपनी चिंताओं को दोहराया है। अमेरिका के साथ संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि कुशल पेशेवरों की तकनीकी दक्षता से भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को बहुत फायदा होगा। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत निमिषा प्रिया की सजा से संबंधित घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में हर संभव सहायता कर रही है। मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। इसमें पिछले वर्ष अक्टूबर में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू की भारत यात्रा के दौरान बनी सहमति की प्रगति समीक्षा के साथ ही उन मुद्दों पर चर्चा की गई जिन पर दोनों पक्षों को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध के महत्व की फिर से पुष्टि करते हुए भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत मालदीव को निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली अब पूरे देश में पूर्ण रूप से संचालित है। पिछले वर्ष दिसंबर में ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लगभग 1,570 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन का भुगतान तेजी से और बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे। श्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। सूरत के ओरो विश्वविद्यालय में सार्वजनिक नेतृत्व पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए श्री मालविया ने देश को आगे ले जाने में युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।